ओम शांति। तो दिल क्या गुनगुना रहा है जी? कर्ण करावन हार करवा रहा है। ये ब्राह्मणों का दिल ही गुनगुना सकता है। संसार में तो कर्ण करावन हार का भी ज्ञान होता है, लेकिन अनुभूति नहीं है। बाबा ने हम सबको ज्ञान सुनाकर साथ में उसकी महसूसता कराई है, रियलाइजेशन कराया। तो आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान समय को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए। इस समय संसार में जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं, उन परिस्थितियों से संसार को उभारने के लिए जो दिन रात चिकित्सक, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज वगैरह कितने जोर शोर से सेवा में लगे हुए हैं, 24 आवर, पूरी रेस्ट भी नहीं हो पाती उनकी। कोई कोई डॉक्टर तो कोरोना संक्रमित होते हैं, शरीर भी छोड़ देते हैं। जैसे सैनिक युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन ये युद्ध तो पूरे संसार में फैला हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और ये विश्व युद्ध भी कम नहीं है, बहुत बड़ा है ये। इसमें शत्रु अदृश्य है। जो शत्रु दिखाई देते हैं उनको मारना तो फिर भी आसान है, लेकिन इसी अदृश्य शत्रु ने सारे संसार में तहलका मचा दिया। जैसे किसी भी मनुष्य के मन ऐसा अशुद्ध नहीं रहा होगा जो इसके बारे में कुछ संकल्प नहीं चला होगा, विचार नहीं चला, या इस परिस्थिति से प्रभावित नहीं हुआ हो। तो यह हम सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, सबक है, पाठ है। और इन परिस्थितियों के बारे में तो बाबा ने सबसे पहले हमको बता दिया है। 1981 की मुरली है, 29 दिसंबर की, उसमें बाबा ने तो जिक्र किया हुआ है कि अभी तो कुछ नहीं है, ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाएंगे। जब तक दवाई निकलेगी तब तक दूसरी बीमारी आ जाएगी। ऐसा समय आएगा कि जलाने वाले भी नहीं रहेंगे, इतनी लाशें हो जाएंगी इकट्ठी। तो ये सारी स्थितियां देख रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमें क्या करना चाहिए, कितना अलर्ट रहना चाहिए, हाई अलर्ट, रेड अलर्ट। संसार में कोई भी विपदा आती है तो उस विपदा से निपटने के लिए बहुत सारी फोर्सेस तैयार करती है गवर्नमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन जो होती है, कि अचानक कोई परिस्थिति आ जाए, प्राकृतिक प्रकोप आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, तो उससे निपटने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो उनका पूरा प्रशिक्षण होता है, पढ़ाई होती है, फिर मॉक ड्रिल करते हैं। तो बाबा भी हम सबको पहले से सचेत करते रहते हैं कि समय ऐसा आने वाला है, लेकिन हमें क्या करना है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें अपने आप को मजबूत बनाना है तो अपने ऊपर बहुत बारीकी से नज़र रखनी पड़ेगी। मोटे तौर पर तो पुरुषार्थ का समय चला गया, अभी पूरा हो गया है, और बहुत गहनतापूर्वक स्वयं पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर हम थोड़ा सा भी लापरवाही बरतेंगे तो वो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती है, इसलिए कदम कदम पर बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये वाला वायरस आएगा चला जाएगा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो वायरस हमारे मन में घुसे हुए हैं अनेक प्रकार के, उनको कौन निकालेगा? शरीर के वायरस को निकालना तो फिर भी डॉक्टर उपचार कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन जो हमारे अंदर के वायरस है उसको कौन निकालेगा? वो तो सुप्रीम सर्जन के बिना कोई निकाल नहीं सकता है। अनेक जन्मों से हम आत्माओं के अंदर कई तरह के वायरस पैदा हो चुके हैं और आत्मा उन बीमारियों से ग्रसित हो गई है, बार बार मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, संजीवनी बूटी सुनाते हैं, आज भी था ना मुरली में, बाप घड़ी घड़ी बच्चों को क्या करते हैं और माया डैश कर देती है, क्या बाप घड़ी घड़ी बच्चों को डैश करते हैं और माया डैश कर देती है? बताओ अभी बाप क्या करते हैं आज की मुरली से, क्या करती है, बाबा क्या करते हैं, बच्चों को सुजाग करते हैं, घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, और माया क्या करती है, माया सुला देती है, क्योंकि सोने की आदत पड़ी है ना। सोना अर्थात विस्मृति, बेहोशी। जो भी ज्ञान सुनते हैं अगर हम उसको किनारे कर देते हैं तो माना जैसे हम सोए हुए हैं, मूर्छित हो गए हैं। बाबा कहते तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए, आज की मुरली में था ना, क्यों, भगवान पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, बाप टीचर बनकर तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हुआ, कितनी बड़ी बात है, स्वयं भगवान के स्टूडेंट हैं हम। तो स्टूडेंट भगवान के हैं तो पढ़ाई कैसी होनी चाहिए। आज सारी मुरली पढ़ाने वाला और पढ़ाई दो चीजों पर भी थी, तो हमें पढ़ा कौन रहा है, स्वयं भगवान पढ़ रहे हैं। और हम पढ़ कितना रहे हैं वो हम सभी अपने आप को झांक सकते हैं कि सारे दिन में मुरली को हमारा मन कितना स्पर्श करता है, उस मुरली से मन कितनी ताकत ग्रहण करता है, या वहीं की वहीं रह जाती है, फिर आगे दौड़ और पीछे छोड़ वो वाली बात हो जाती है। तो वास्तव में ज्ञान बहुत बड़ी एक गिफ्ट मिली है हम सबको, सबसे बड़ी गिफ्ट भगवान के साथ साथ भगवान जो ज्ञान दिया है, इसलिए था ना आज ज्ञान से प्रीत और ज्ञानदाता से प्रीत, ज्ञान देने वाले से प्रीत। जितनी प्रीत हमको बाबा से है उतनी प्रीत ज्ञान से होनी चाहिए। अगर ज्ञान से प्रीत नहीं है तो बाबा से भी प्रीत नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर कौन से स्टूडेंट पर टीचर की नज़र पड़ती है, जो पढ़ाई पढ़ते हैं। और जो बच्चे बार बार टीचर के अनुरोध करने के बाद भी बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ते तो टीचर भी क्या करेगा, उसमें बोलेंगे तकदीर है इनकी। तो बाबा हमारे पर कितनी बार बार डेली कितनी हमारे पर ताकीद करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं हमारे पर, पढ़ो 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 पढ़ो, क्योंकि पता है आने वाले समय में आत्मा में बहुत शक्ति चाहिए सब चीज़ों से किनारा करना, जिन चीज़ों से हमने ममत्व पैदा कर लिया है, जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी रचना है, तो अपनी रचना बहुत प्रिय होती है सबको। तो जन्म जन्म से हमने अनेक प्रकार की रचना रची है, और उससे ममत्व मिटाना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वास्तव में पता चला जो रचना रची वो तो अल्पकाल की है, विनाशी है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, उससे आत्मा गिरती कला में आई है, अवनति होती गई है, आत्मा में विकारों की प्रवेशता हो गई है। बाबा ने कहा ना आत्मा पर कट चढ़ी है, इसलिए बाप तुम्हें सच्चा सच्चा क्या बनाने आए हैं, सोना बनाने के लिए आए हुए हैं। तो भगवान हम सबको सोना बनाने के लिए आए, शुद्ध सोना, प्योर आत्मा जो इम्प्योर हो गई थी, तो प्योरिटी का बल भर रहा है। तो बल कैसे भरेगा, उसके ज्ञान से। तो थोड़ा अपने ऊपर अटेंशन रखने की जरूरत है। ज्ञान हमको बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी नहीं बल्कि सारी मुसीबतों से छुड़ाता है। सारी समस्याओं का समाधान ज्ञान है, ज्ञान के आधार पर ही सारे सब्जेक्ट हैं। ज्ञान का फाउंडेशन हमारा कमजोर है तो बाकी सारे फाउंडेशन जो दूसरे सब्जेक्ट के फाउंडेशन है वो भी लड़खड़ाते रहेंगे। निश्चय भी कैसे होता है, पहले भगवान ने आके ज्ञान सुनाया तो ज्ञान के बल पर ही तो निश्चय पैदा हुआ ना, समझ आई ना हमको। याद तो भगवान को हम पहले भी करते थे लेकिन सत्य ज्ञान नहीं था, वो था अंधश्रद्धा, जो बाबा ने कहा झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, आज की मूल्य में था ना। तो अभी बाप ट्रुथ है तो सत्य बताएंगे ना, तो जो सत्य ज्ञान बाबा आकर दे रहा है उस ज्ञान को हम कितना सारे दिन में अपने मन में मनन करते रहते हैं, उसमें विचरण करते रहते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उस ज्ञान को अलग अलग ढंग से देखते हैं। एक चीज है हमको सामने से ऐसी दिखाई दे रही है, रोज हम इसी तरफ से देखते रहेंगे तो हम बोर हो जाएंगे, उसी चीज को घुमा के सारे तरफ से देखना है, अलग अलग एंगल से देखेगी वो। जैसे मकान की छत पर खड़े हो जाते हैं, केवल सूर्य की तरफ देखते रहेंगे तो बाकी भी तो किनारे हैं ना, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, घूमना पड़ेगा ना, सारे तरफ घूमना पड़ेगा, तभी प्राकृतिक दृश्यों का हम अनुभव कर सकेंगे, धूप का, छाया का, सब चीज का अनुभव कर सकेंगे। ऐसे ज्ञान के पॉइंट को भी हर एंगल से देखना है। वो जरूरी नहीं बाबा जिस तरीके से सुनाया उसी ज्ञान को बाबा ने कई एंगल से सुनाया हुआ है। जैसे निश्चय तो है ही है, लेकिन काल कितनी बातें बता दी निश्चय बुद्धि की ने, कौन कौन सी थी? सबसे पहला निश्चय कौन सा था? रूहानी नशा होगा जिसको, अगर निश्चय है, निश्चय बुद्धि आत्मा है, उसको हर बात में, हर संकल्प में, हर कर्म में रूहानी नशा होगा, क्योंकि सत्य है, उसको पता चल गया कि ये वास्तविकता है। और दूसरा निश्चय क्या था? सदा विजय होगी। क्यों? क्योंकि साथी कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान हमारे साथ में है, उसका साया, उसका परछाया, उसकी परछाई शत्रु छाया हमारे सिर के ऊपर है, वो हमेशा हमारे साथ है। अगर साथ रखेंगे तब तो कार्य करते हुए उसकी शक्ति प्रयोग में, उपयोग में आएगी ना। अगर वो साथ ही नहीं है तो कार्य करते समय वो कैसे हमको याद आएगा, कैसे वो हाथ बटाएगा हमारा? अगर हमारी आपसे दोस्ती है और जिस काम के लिए हमको आपकी आवश्यकता पड़ी है और हमने आपको याद ही नहीं किया, आप उस काम को कर सकते हैं, तो जैसे होते हुए भी मैं फायदा नहीं ले पाया। तो भगवान तो है, हमको ज्ञान भी है, समझ भी है, लेकिन इसमें हम काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मेरे से मदद लो, बाबा का आह्वान करो, आओ बाबा मदद करो। तो हमारे लिए बैठा हुआ है, मदद क्या? उसके ज्ञान को याद करना भी मदद ही है। तो बार बार उसका आह्वान करना है, तो सदा विजय होगी, निश्चय है दूसरी पॉइंट। और तीसरी कौन सी थी बात? हाँ जी, नो डाउट, कोई संशय नहीं किसी भी बात में, नहीं ना ड्रामा में, ना परिवार में, ना बाप में, ना ज्ञान में, किसी भी बात में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ड्रामा कैसा है? वफादार ड्रामा है। उस दिन बताया ना, अगर कोई रॉन्ग पार्ट प्ले कर रहा है तो वो भी एक्यूरेट रॉन्ग प्ले कर रहा है, उसका उसमें रोल ही ऐसा है। अगर कोई लड़ाई झगड़े वाला विलेन का पार्ट प्ले कर रहा है तो कितना अच्छा लगता है फिल्म में, देखते ना। तो अगर सारे हीरो जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो भी ड्रामा विविधतापूर्ण ड्रामा है, इसमें हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जब हम ये स्मृति में रहते हैं तो किसी भी आत्मा की स्थिति हमको प्रभावित नहीं कर सकती, हम सदा अचल अडोल रहेंगे, हलचल रहेंगे। अनेक प्रकार की परिस्थितियों में आते हुए भी अपना रास्ता खुद निर्माण कर लेंगे, सफलता का रास्ता। तो ये निश्चय बुद्धि की तीसरी निशानी थी, कौन सी थी? नो डाउट। और चौथी निशानी कौन सी थी? नो क्वेश्चन, कोई प्रश्न नहीं कि क्यों ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे होता है क्या, अभी कौन संपन्न बना है, अनेक प्रकार प्रश्नों का अंबार लगा रहता है। या कई दफा ऐसे भी होता है हमारे मुख से कोई अगर बोल निकलता भी है तो उस बोल से जैसे कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं, कईयों का बोल ही ऐसा होता है प्रश्नात्मक, उसमें उत्तर नहीं होता, सोल्यूशन देने की बात नहीं है। अगर किसी को हम सोल्यूशन पूछे तो सामने वाले के सोल्यूशन में और ही प्रश्न समाये होते हैं। इसलिए स्वयं के समस्याओं का समाधान हमको मुरलियों में ढूंढना है, भगवान से बड़ा तो कोई बता नहीं सकता है, हर समस्या का समाधान है इस ज्ञान में। तो ये चौथा निश्चय। पांचवा, बेफिक्र बादशाह। ऐसे निश्चय तो और बहुत सारे हो सकते हैं, तो बेफिक्र, अगर हमको निश्चय है तो सदा निश्चिंत रहेंगे, निश्चित, निश्चिंत और निश्चय, निश्चित और निश्चय। तो ये सारी निशानियां, उदारता रहेगी, उदारता के साथ संतुष्टता रहेगी, संतुष्टता के साथ फिर एक सुख कल्याण की भावना रहेगी, बलिहार जाना अर्थात श्रवण समर्पित। तो ये सारी निशानियां, अनेक प्रकार की निशानियां, स्मी प्रत्न होंगे, दूसरों को रूहानी नशा होगा, नियमित निर्माण कल्याण की भावना होगी, नियमित होंगे, निर्माण होंगे, निर्माण होंगे। तो अनेक प्रकार की निशानियां अगर चिंतन करने बैठे तो सचमुच जो कल बताया ना कि मुरली चिंतन करते करते सोचते सोचते मन इतना एकाग्र हो जाता है कि मुरली से हटके भी भगवान के महावाक्यों का ऊपर से जैसे अवतरण होने लगता है। आप महसूस कीजिए, कभी भी जब भी मन भटक रहा है कोई बात नहीं, जो सवेरे मुरली सुनिया कापी पेंसिल लेकर बैठ जाओ, याद करो, कुछ ना कुछ तो याद आएगा ना। ऐसे बाबा ने बताया, इस पढ़ाई में बहुत खूबी है। कौन सी खूबी है? हाँ देखो, माता ने याद रखा हुआ, जो पुराने से भी तीन साल के या तीन महीने के बच्चे आगे तीखे चले जाएंगे, तो इस पढ़ाई में खूबी है। बुजुर्ग भी आगे जा सकते हैं, बच्चे भी आगे जा सकते हैं, जो लास्ट और फास्ट जा सकते हैं उसमें ड्रामा में है ये, तो ये खूबी है ना पढ़ाई की, है ना। तो हमको मुरली के ऊपर ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ तो पॉइंट बुद्धि में टकपता रहना चाहिए, तो रेड अलर्ट मोड पर रहना, हमको पूरा एक्टिव रहना है, अटेंटिव रहना है, मूर्छित अवस्था में नहीं, है ना। जैसे देखें संसार में अभी रेड अलर्ट ही समझो, हाईलाइट लगा हुआ, लॉकडाउन लगा हुआ, तो उसमें क्या है, ये जो जितना भी हम स्थूल में हमको नियमों का पालन करने के लिए सरकार जो दिशा निर्देश देती है उनमें भी हमको ज्ञान को ढूंढना है। कैसे? बाबा ने बताया ना, हर लौकिक बात को अलौकिकता में परिवर्तन करो। अभी जैसे मास्क लगाया, इसका क्या अर्थ है? क्यों लगाया? क्योंकि अंदर वायरस चला ना जाए। तो हमको कौन सा मास्क लगाना साथ साथ में, जो आत्मा के अंदर वायरस ना चले जाए? मौन का मास्क, इस मुख से जितना हो सके कम बोलने का, या वो बोल बोलने सुखदाई बोल बोलने, दुखदाई बोल बोल के और ही आत्मा के अंदर वायरस चले जाएंगे। पहले से बोझ बहुत है, आत्मा थक गई है, और हमने बुरा बोल दुखदाई बोल बोलकर और ही आत्मा के अंदर वो बोझ जमा कर दिया, तो आत्मा और ही भारी हो जाएगी, उड़ान कैसे भरेगी? तो हर बात का इसमें हमको अलौकिक ज्ञान का बिंदु ढूंढना है। मास्क पहन के रखनी, मौन है ना, मौन का सुख लेना। मौन वास्तव में हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है। जितना जितना हम इस पुरुषार्थी मार्ग पर आगे जाते जाएंगे, अगर हमारा पुरुषार्थ एक्यूरेट है, तो हमारी अवस्था स्वतः मौन की अवस्था में जाती जाएगी अपने आप। मौन रखने की जरूरत नहीं है, मौन अपने आप हो जाएंगे। अगर हमारा मौन करने को मन नहीं होता है, तो माना कहीं ना कहीं हमारी पुरुषार्थ में लीकेज है, व्यर्थ में लीकेज। बताया ना परसों प्रधान में था, व्यर्थ की लीकेज को स्टॉप करो। तो हमको देखना है, तो डिस्टेंस भी बना के रखना। कौन सा डिस्टेंस? किस चीज से डिस्टेंस बना के रखेंगे? न्यारा और प्यारा, एक तो दूसरों से है, यहां कौन सा डिस्टेंस? एक है न्यारा, अर्थात अपनी देह से भी डिस्टेंस बना के रखना है। ये देह भी तो सबसे बड़ा वायरस है ना, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, देह सहित देह के सर्व संबंधों को बुद्धि से भूल मामे कम याद करो। ये तो सबसे प्रिय है ना, सारा दिन इसको खिलाना पिलाना श्रृंगारना है ना, तो ये भी देह क्या है, ये सबसे नजदीक, इससे डिस्टेंस बना के रखना दूरी। अर्थात लंबे समय तक जैसे देह हम विस्मृत रहे, देही का चिंतन चलता रहे, आत्मिक चिंतन चलता रहे। वो दिन था ना वरदान में, कितना सुंदर वरदान था, परसों के वरदान में था, जो बच्चे देही अभिमानी रहते हैं वो देही अभिमानी अवस्था वाले बच्चे परमात्म शक्तियों की अनुभूति करते हैं, उससे सर्व संबंधों की, आज के वरदान में था, सर्व संबंधों की अनुभूति होगी। क्यों क्यों होगी अनुभूति? क्योंकि वो भी देही है, तो उसको मिलने के लिए उसके जैसा बनना पड़ेगा ना। अगर मुझे दोस्ती करनी है तो आप जैसे संस्कार मुझे बनाने पड़ेंगे ना। तो भगवान से अगर हमको समीपता का अनुभव करना है तो उसके जैसे संस्कार बनाने पड़ेंगे। तो वो न्यारा रहता सदा, देश ही न्यारा है, कुछ समय के लिए टेम्परेरी। बाबा इस रथ में, आज के मूल्य में था ना, इस रथ में आते हैं, नहीं तो सुनाएंगे कैसे। तो हम भी अपने आप को महसूस करें कि हम टेम्परेरी इस रथ में आए हुए हैं, कुछ दिनों के मेहमान हैं। मेहमान का कहीं कोई अटैचमेंट नहीं होती है। अटैचमेंट की भी बात थी आज, कौन सी? हाँ, क्या स्लोगन था? स्वयं के साथ साथ प्रकृति को पावन बनाना है तो लगाव मुक्त बनो। तो इसका क्या चिंतन किया, कैसे लगाव मुक्त बनेंगे, उसका उसके साथ क्या कनेक्शन है, प्रकृति कैसे पावन बन जाएगी लगाव मुक्त होने से? तो वास्तव में वो वाली प्रकृति के साथ ये वाली प्रकृति की बात है, इससे लगाव मुक्त बनना है। जितना हम इससे डिटैच होंगे तो स्वतः हमारे से जो प्योरिटी के वाइब्रेशन, क्योंकि आत्मा जब हम अपने मूल संस्कार में स्थित हो जाते हैं, मूल स्वभाव में स्थित हो जाते हैं, मूल जो हमारा रहने का स्थान है उसकी स्मृति में स्थित हो जाते हैं, तो वाइब्रेशन भी वैसे निकलने लगते हैं। जो हमारी सोच है उसी सोच के अनुरूप वृत्ति बनती है, उसी के अनुरूप वाइब्रेशन का निर्माण होता है। तो प्रकृति को, इस बॉडी को भी निरोगी बनाना है, पावन बनाना है इसको भी। अर्थात ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जो आंखें हैं, नाक है, कान है, मुख है, ये भी हमारे दिन प्रतिदिन शुद्ध होते, क्योंकि इन कर्मेंद्रियों के द्वारा भी हमने अनेक जन्मों में कई तरह के कर्म किए हुए हैं। विकर्म भी हैं, कि ये अच्छे कर्म भी हैं, बुरे कर्म भी हो सकते हैं। तो इनको भी शुद्ध बनाना है, क्योंकि हमारे संगी साथी हैं, इनके साथ हमको 24 घंटे रहना है, तो इनको तो परिवर्तन करना पड़ेगा ना। अगर हमारे अड़ोसी पड़ोसी ठीक ठाक नहीं है, रोज नॉन वेज बना रहे हैं या कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, कैसा लगेगा? तो ये हमारी पड़ोसी हैं, आंखें भी आत्मा के नजदीक है ना, ये आंखें मुख हाथ सब है। अगर रोज आंखें बुरा देखती रहें, रोज दूसरों की चमड़ी को स्पर्श करती रहें मन से, तो क्या है, नॉन वेज हो गया ना, जैसे हम विष घोल रहे हैं, जहर है वो, तो एक जहर के समान है। तो इन पड़ोसियों को हमने कितना प्योर बनाया है। आंखों के लिए बाबा ने क्या क्या श्रीमत दी हुई है, मुख के लिए क्या क्या श्रीमत दी हुई है। रोज मुख से हम जहर उगलने वाले बोल ही बोलते रहते हैं, कटाक्ष वाले बोल बोलते रहते हैं, व्यंग्य वाले बोल बोलते रहते हैं, तो फिर आत्मा तो दुखी होगी ना, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी तो सारे दुखी हैं, दुखी पैदा कर रहे हैं। इसलिए वह कहते चैरिटी बिगेंस एट होम, कल की मुरली की स्टार्टिंग थी ना, तो चैरिटी बिगेंस एट था, ये भी हमारे घर है, ये घर एक मंदिर है। उस दिन बताया था ना 14 तरह की मुरली में सेकंड पैराग्राफ, ये मंदिर है, इस मंदिर में हम आत्मा विराजमान है, तो उस आत्मा के आसपास की स्वच्छता कितनी है, आत्मा को हमने कौन कौन से गुणों से श्रृंगारा हुआ है। जो वो भगवान हमको रोज भोग लगाता है, एक तो हम भगवान को भोग लगाते हैं, दूसरा भगवान हमको रोज भोग लगाता है, कौन सा, कितनी अच्छी बात, भगवान भोग लगाता है, कौन सा, ये 4 पेज का जो ज्ञान का भोग है, और क्या है वो वाला भोग, कोई गति सदगति होने वाली नहीं है, ज्ञान से होगी वो। हम जितना मर्जी ब्रह्मा भोजन खा लें, उससे शुद्ध हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उससे। वो तो हमको ठीक है, याद करने की युक्तियां हैं कि बाबा की याद में भोजन स्वीकार करना है, उससे तो खाते खाते हमारा पेट ही और बढ़ जाएगा, आसक्तियां बढ़ जाएंगी। तो ज्ञान का भोजन करना, रोज भगवान हमको भोग लगा रहा है, पूरा 1 घंटा लगाता भोग लगाने में, है ना, तो कितनी अच्छी बात है। अनुभव करना है, जैसे भगवान ने मुझे अपनी थाली में रखा हुआ है, मेरा भोग लगा रहा है वो, मुझे भोग लगा रहा है, मुझे खिला रहा है, ज्ञान के, ज्ञान का भोजन खिला रहा है ना, पौष्टिक फल आहार, ज्ञान का दूध पिला रहा है मुझे, है ना, मेरी आंखों में ज्ञान का अंजन डाल रहा है। बाबा ने कहा ना, आज तुम्हें मैं तुम्हें ज्ञान का 3रा नेत्र देता हूँ, है ना, दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य बुद्धि दी है, कितना कुछ हम, हमारा परिवर्तन कर दिया सारा भगवान ने। तो सारी स्मृतियां दिन प्रतिदिन आत्मा उन स्मृतियों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, तो स्वतः वो शक्तिशाली बनती जाएगी, फिर दूसरी बातों में आने का मार्जिन नहीं रहेगा। नहीं तो वास्तव में हमारा शत्रु कोई है नहीं है, कहते ना आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र है, हमारा शत्रु दूसरा कोई नहीं है। अगर हम कोई दूसरा कोई बात बोलता है तो वो हमारे पर डिपेंड करता है, उस बात को हम अपने मन में कितना रखते हैं। अगर उस मन बात को हमने गहराई तक उतार दिया तो वो बात हमको डिस्टर्ब करती रहेगी, हमने उतारा ही नहीं क्योंकि ज्ञान को पहले से भर चुके हैं, तो वह कोई कुछ भी बोलता रहे। हमने कई देखा कई भाई बहनों को इतनी अच्छी अवस्था, कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन अपनी अवस्था उनकी बहुत ऊंची है, तो सीखने को मिलता है। जिन्होंने अपने आप को ज्ञान योग से बात धारणों में डुबा के रखा है, अपने लक्ष्य के प्रति वो सजग रहते हैं, उनको पता ये हमारे सब्जेक्ट हैं, दूसरा को हमारे सब्जेक्ट ही नहीं है। अब हमको पढ़ाई करनी है बीए की, और हम पढ़ाई दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हैं कोई दूसरी क्लासों का, कोई मैट्रिक का या एमकॉम का, तो समझ में आएगा, नहीं, कोई काम नहीं आएगा, पेपर तो हमको बीए का देना है। तो जो हमको पढ़ाई मिली है उस पढ़ाई के प्रति हम पूरी संवेदना पूर्वक, पूरी सजगता से, पूरी निष्ठा से, पूरे मनोयोग से लग रहे, तो बाबा हमको मदद नहीं करेगा तो किसको करेगा। लेकिन थोड़ा तो ध्यान तो देना पड़ेगा ना भाई, भगवान हमारे ऊपर इतना ध्यान दे रहा है, पूरा दिन ध्यान दे रहा है, मनसा वाचा कर्मणा स्थूल सूक्ष्म हर तरीके से भगवान हमारे ऊपर कितनी मेहनत कर रहा है। आज बाबा ने बोला ना, ये है सच्चा सच्चा कुंभ, आत्मा और परमात्मा का मेला। तो ये मेला कितना सुंदर मेला है, जहां हम बैठे हैं, जब भी हम इस हॉल में आते हैं तो स्मृतियां सारी ऊपर आती हैं, कौन सी, जब मम्मा बाबा यहाँ बैठते होंगे, जब दादियों की यहाँ महफिल लगी होती होगी, बाबा यहाँ संदली पर बैठे थे, यहाँ से टोली दी जा रही है, वो सारी स्मृतियां हमको क्या करती हैं, तरोताजा फ्रेश कर देती हैं। उस कालखंड में अगर हम चले जाएं तो वो सारी महसूसता होने लगती है। ये सारी तस्वीरें क्या है, ये खाली तस्वीरें नहीं है, ये बोलती हुई तस्वीरें हैं, इनके अंदर कितना कुछ भरा हुआ है, त्याग तपस्या शिक्षाएं, इनके ऊंच कोटि के चरित्र भरे हुए हैं, उनकी आंखों से पता चलता कि ये कौन सी मूर्तियां हैं, है ना, इस बाहर में गैलरी में 21 तस्वीरें लगी हुई है, देखो एक को के देखो, एक एक के आगे खड़े हो जाओ, कैसा उनका जीवन चित्र रहा है। भगवान ने जिनको सर्टिफिकेट दिया, जो यज्ञ की पिलर रहे हैं, मजबूत पिलर, आज तो उनको दर्शन करने के लिए तरस गए ना, धीरे धीरे कहां से कहां तक यज्ञ पहुंच गया। तो उन मूर्तियों का त्याग तपस्या किसी हमने क्या सीखा, केवल फोटो को देखने से नहीं, लेकिन उनकी जीवन कहानी, कहां से उनकी जीवन यात्रा शुरू हुई, कहां तक उन्होंने जीव यात्रा करते 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 संसार के लिए कितनी रोशनी दे दी उन्होंने, कहां से कहां तक कई नई दिशा दे दी, जैसे कहां कहां से आत्माओं को निकाला, गांव गांव से, कस्बों कस्बों से, अपना दिन रात की नींद त्याग के भी, भूख प्यास त्याग के भी। तो अगर उनकी त्याग तपस्या के को सामने रखते हुए भी हम थोड़ा सोचें तो हमारे पुरुषार्थ स्वतः वो जागृति आएगी अंदर से। जब जागृति आएगी तो फिर हम बेहोशी में जा ही नहीं सकते, बेहोशी में जाते हैं, विस्मृति में जाते हैं तो ही हमारी अवस्था डाउन होने लगती है। इसलिए हमेशा अपने आप को सजाग रखना है, किसी ना किसी तरीके से, अपनी युक्ति कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं बाबा ने जो मुरली में बताई है उससे हटके भी कोई हो सकती है, किसी दूसरे मुरली में हो सकती है, अव्यक्तवाणी में हो सकती है, इतनी ढेर सारी अव्यक्तवाणियों का भंडार लगा पड़ा है। तो वो देखना है समय कौन सा चल रहा है और हमको क्या करना चाहिए, मतलब पुरुषार्थ में रस आना चाहिए। अगर रस पैदा नहीं हो रहा, माना हम पुरुषार्थ में नवीनता लाने के बजाय पुराने डर्रे पर ही चल रहे हैं, उसी पर रोज रोज वो ही करते जा रहे करते जा रहे हैं। हाँ अभ्यास तो करने हैं, लेकिन उन्हें अभ्यास को नए नए तरीके से करना। आज बाबा ने कहा तुम अधिकारी आत्माएं हो, प्रधान में था ना, तो अधिकारी आत्माओं को मांगने की जरूरत थोड़ी नहीं है, अधिकार है भगवान के ऊपर हमारा, अधिकार है उसकी संपत्ति पर, अधिकार है उसके सारे खजानों पर, अधिकार है बुद्धि के संबंध उससे जुड़े हुए हैं, सर्व संबंधों पर अधिकार है। वो तो लुटाने के लिए आया हुआ है, लेकिन हम ही मूर्छित हुए पड़े हैं। तो थोड़ा उस पर नजर रखेंगे तभी तो हमारे ऊपर उसकी नजर ठहरेगी ना, नहीं तो ठहरेगी कैसे। तो अपनी अवस्था को ऊंच उठाने के लिए सोचना है कि मैं इस समय क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए, हर पल अपने आप को सजाग रखना है। नहीं तो जैसे हम थोड़ा विस्मृत हो जाएंगे तो माया का प्रहार किसी न किसी रूप से, चाहे वो हमारे पुराने संस्कार हैं, क्योंकि अंदर में संस्कार बहुत गहरे बैठे हुए हैं, वो निकलने लगते हैं धीरे धीरे, किसी न किसी रूप से निकलेंगे वो। हमारी कई ऐसी आदतें हैं, चाहे कोई देखने की आदत है, चाहे कोई बोलने की आदत है, व्यर्थ गप्पे मारने की आदत है, आपस में चर्चा करने की आदत है, या फिर वातावरण को खराब करने की आदत है, कितनी सारी आदतें पहले से हैं तो सही हमारे अंदर, ये तो हम नकार नहीं सकते कि वो आदतें नहीं है, कि हम संपूर्ण बनेंगे। बाबा ने कहा ना ये पढ़ाई कब तक पढ़नी है, आज की मूल्य में था, जब तक कर्मातीत अवस्था ना हो जाए, तो हिसाब किताब जब तक पूरा ना हो जाए। हाँ मुरली के अंदर वो भी था, तो बताया ना उस दिन कर्मातीत अवस्था की कितनी निशानियां थी, मुरली भी थी पूरी, कर्म करते हुए कर्म से डिटैच, कर्म का संबंधन होगा, कर्म का बंधन नहीं होगा। तो हमें अपने पथ पर कदम कदम पर पूरा सजाग रहने की जरूरत है, क्योंकि समय अभी दिन प्रतिदिन ऐसा आता जा रहा है कि एक तो अपने आप से सावधान, अपनों से सावधान, है ना, जिनको हम अपना समझते हैं अभी संसार में जो परिस्थिति, उससे क्या हो रहा है, हर कोई अपने आप को जैसे अकेला अनुभव करता जा रहा है, और ये तो अच्छा होना भी चाहिए अकेला, जब इन हाँ जी असुरक्षित संसार में तो असुरक्षा भय का माहौल है, लेकिन हम ब्राह्मण तो बाबा के बच्चे हैं, जिसको ज्ञान बुद्धि में अच्छी तरह घोट के बिठाया हो उसने, तो उसको कोई असुरक्षा नहीं है, वो सुरक्षित है हमेशा। हमेशा अपने आप को समझ के चलना है कि मैं बाबा की छत्रछाया में, उसकी लाइट में चल रहा हूँ हमेशा, उसके साथ बाबा ने बताया ना अंत में लाइन क्लियर होनी चाहिए। लाइन क्लियर होगी कैसे, लंबे समय का अभ्यास होगा, अंदर से हमने कचड़ा निकाला नहीं है, पहले से बहुत सारा अंदर में कूड़ा कचड़ा जमा करके रखा है, लाइन क्लियर है ही नहीं है, क्या होगा फिर, है ना, जैसे बिजली की लाइन है अगर बीच में स्पार्किंग करते क्या होगा, विस्फोट हो सकता है, उस विस्फोट से स्वयं जल भी सकते हैं। ऐसे ही है, अगर ज्ञान हमको स्मृति में नहीं है तो कचड़ा दूसरा भरा पड़ा है, वो हमारे लिए घातक है। तो सारे दिन में अपने अपने बुद्धि में हमने क्या क्या भर के रखा हुआ है, अपने आप से जग रहने की जरूरत है ना। तो जो रेड अलर्ट मोड पर रखना हमको हमेशा अपने आप को, तो मास्क पहननी अर्थात मौन में रखना है, अंतर्मुखता में रहना है, कम बोलना है, मौन अर्थात निर्वाण धाम में बार बार जाने का अभ्यास करना है, है ना। फिर जो पेशेंट होते हैं उनको बचाने के लिए क्या कहते हैं, एक्सरसाइज भी करो, पहले से ह्यूमिनिटी पावर बढ़ानी है। सबसे बड़ी ह्यूमिनिटी तो कल बताई ना, प्योरिटी ही ह्यूमिनिटी है। पावरफुल संकल्पों का संग्रह करना बुद्धि के अंदर, जिससे आत्मा के अंदर प्योरिटी का बल भरेगा। शक्तिशाली संकल्पों का खुद निर्माण करना है, नए नए तरीके से ज्ञान के नए संकल्पों का निर्माण करना है, बार बार बुद्धि में उनको रिवाइज करना है, रियलाइज करना है, और उसको योग में उनका प्रयोग करना है स्वयं के ऊपर ही, सबसे पहले स्वयं के ऊपर, क्योंकि इसमें सुप्रीम सर्जन एक ही है भगवान। उस सुप्रीम सर्जन से हमको पूरा फायदा लेना है, उसकी सुरक्षा कवच में रहना है, उसकी लाइट माइट के घेरे में रहना है। जो उससे हमको ज्ञान गुण शक्तियां मिली हैं, जो खजाने मिले हैं, उसके सुरक्षा चक्र में रहना है। जैसे हमेशा वो हमारे ऊपर बरस रहे हैं, उन वरदानों का अनुभव करना है। तो कितनी सारी बाबा बातें बताते हैं। तो मास्क, मौन की मास्क हमेशा पहन के रखनी है, डिस्टेंस बना के रखना है, दे के संबंधों से, दे के पुराने संस्कारों से, दे के पुराने स्वभाव से, पदार्थों से, आकर्षणों से, वैभवों से, कितनी सारी दे की बातें हैं। दे का जंजाल बहुत बड़ा है, तो उनसे दूरी बना के रखनी है। और फिर बार बार क्या करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो अपनी बुद्धि को भी बार बार वॉश करना है, धुलाई करनी है, उसकी सफाई करनी है, ज्ञान से सफाई करनी है, अंदर का किचड़ा साफ करना उसको। क्योंकि सारे दिन में ऐसा तो नहीं है कि बाबा कहते हैं आत्मा देखो तो आत्मा ही दिखाई दे रही है, कभी भी कर्मेंद्रिय हलचल होती है। बाबा ने बताया ना परसों, ये आंखें बहुत धोखेबाज है। कितने लंबे समय से साधना कर रहे हैं, हम स्वयं अपने आप को जान सकते हैं कि आंखों पर संपूर्ण नियंत्रण है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है। तो लंबे समय का अभ्यास है ये, तो सारे दिन में कभी हलचल होती है तो फिर से उसको वॉश करना है, अपने मन को वॉश करना है, अच्छे अच्छे विचार देना, सोमान में स्थित हो जाना, उसको बैठ जाना बाबा के कमरे में या कहीं भी बैठ जाओ, बाबा का आह्वान कर लो अपने पास, जहां भी हम बैठे हैं बॉडी से डिटैच हो जाए। तो ये अपने आप को हैंड, अपने मन बुद्धि को वॉश करते रहना बार बार, एक्सरसाइज करनी है, अर्थात ड्रिल करनी है बार बार। ड्रिल से आत्मा बहुत शक्तिशाली बनती है। हम कई बार महसूस करते हैं भले हम योग यहाँ कर रहे हैं, लेकिन अपने मन को बाबा के कमरे में बैठा देना, योग मेडिटेशन हॉल में कर रहे हैं अपने कमरे मन को शांति स्थान पर बैठा देना, योग घरों में कर रहे हैं अपने मन को मधुबन में पहुंचा देना। क्यों? बॉडी से डिटैच हो जाता मन, जैसे आत्मा शरीर से डिटैच होती तो बहुत शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए संसार में जो भूत प्रेत आत्माएं जिनके बारे में जिक्र होता है तो शक्तिशाली होती ना, पछाड़ देती हैं वो। हमने देखा था एक बार कॉन्फ्रेंस ऑफिस में, ओम शांति उनके नीचे, रात की रात्रि ग्रुप में, तो वहाँ एक माता जी थे, तो दुबले पतले माता जी, आगे टेबल रखा हुआ था। तो उस समय सूरज भाई आए थे ग्रुप चर्चा करने के लिए, तो जैसे चर्चा हो रही तो बीच में एक टॉपिक किसने छेड़ दिया है, भटकती आत्माओं का, इसी के अंदर आती होगी। तो जैसे टॉपिक करके चर्चा पूरी हुई तो आत्मा अंदर प्रवेश कर गई, और सामने एक टेबल रखा तो उसने दुबली पतली माता बाएं हाथ से टेबल ऐसे उछाल दिया एकदम, इतनी ताकत आ गई उसमें। तो जैसे आत्मा शरीर से डिटैच होती है बहुत ताकत आ जाती है, इसलिए बार बार शरीर से डिटैच होने, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। क्योंकि हमारा डिटैच होने की प्रक्रिया अलग है, संसार की आत्मा तो अलग है, लेकिन हम जो ज्ञान से डिटैच होते हैं, और डिटैच होकर कहाँ जाना है, ये हम सबको ज्ञान मिला हुआ, रोशनी मिली, प्रकाश मिला हुआ है। तो क्योंकि हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो उसकी शक्ति भी हमारे साथ पास में आती है, एक प्लस एक बराबर 11 हो जाते हैं ना। तो आत्मा में परमात्मा की शक्ति का जब समावेश होगा तो कितनी वो ताकतवर हो जाएगी, शक्तिशाली, जो एक स्ट्रांग हो जाएगी, विल पावर बढ़ जाएगी उसमें, ज्ञान का स्पष्टीकरण करने के लिए आत्मा में प्योरिटी आती रहेगी, मन एकदम पारदर्शिता आती रहेगी। तो ड्रिल बहुत जरूरी करनी है बार बार, अशरीरी बनने की, चाहे फरिश्ता होकर परिक्रमा दो। और वर्तमान समय संसार में तो उस दिन भी बताया ना, आत्माओं को शांति का दान देना है, देखना है कि जो दुखी आत्मा है ना वो नहीं है, हम वो है। नहीं तो दूसरे का दुख देख तो मन इतना पसीजता नहीं है, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना है, उस स्थान पर हम हो तो क्या बीतेगा, उन आत्मा को कौन शक्ति देगा, शांति का वाइब्रेशन देगा। वो तो बेचारे दुखी हैं, अशांत हैं, अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, वही विचार चल रहे हैं दिन रात, जो बताया ना भय का माहौल है, क्योंकि फ्यूचर भी उनका जैसे दांव पर लग गया एक हिसाब से, कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है। इन बातों से तो बाबा ने हम सबको पहले ही बता दिया हुआ कि आएंगी बातें, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, है ना। अभी पिछले गुरुवार को संदेश सुन रहे थे हम गोदावरी बहन जी का, आज भी शायद किसने भी है, तो बाबा ने कहा कि बच्चे योग तो करते हैं लेकिन शक्तिशाली योग नहीं है, मन बुद्धि कहीं ना कहीं चला जाता है, भले आधा घंटा योग में बैठते हो लेकिन वो शक्ति और वो शांति आत्मा में भरनी चाहिए, वो महसूसता होनी चाहिए, लेकिन बच्चे कई बारी नींद में चले जाते हैं। बाबा ने कहा इसमें तो कुछ नहीं है, अभी आने वाला समय तो दुखों के बादल फटेंगे ऊपर से, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, ये तो रिहर्सल है। वो दिन बताया था ना 14 तारीख की मुरली में रिहर्सल, कि आने वाली जो परिस्थितियां, अनेक प्रकार की परिस्थितियों में स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए रिहर्सल करो बार बार, कौन से ड्रिल करो ये वाली। तो संसार के जो जितने भी परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं, हमें बार बार सचेत कर रही हैं, हमें कुछ ना कुछ कह रही हैं, हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग कर रही हैं, सचेत कर रही हैं, अलर्ट कर रही हैं एकदम। तो अभी वो ढीला ढाला पुरुषार्थ करने का समय चला गया, अभी पुरुषार्थ का समय तो चला गया अभी वास्तव में, अब तो महीन पुरुषार्थ करने की बात है, जो भी हमारी सूक्ष्म कमजोरी है उनको छोड़ने की बात है। और हमने देखा जो संस्कार पड़े हुए हमारे पहले से वो ही अधिकतर काम करते हैं, इसलिए फिर भी जो भी हमको टाइम मिल रहा है उसमें नए संस्कारों का निर्माण करना है, नई आदतों का निर्माण करना है, छोटे छोटे गोल रखने हैं, ज्ञान योग के गोल रखने हैं, अपने ऊपर उनका प्रयोग करना है, ताकि कल को हमारा मन उलाना न दे, मन में कुछ ऐसे संकल्प ना उठे कि हाय हमने तो किया नहीं, जो हम कर सकते थे कर लेना चाहिए था, सब परिस्थितियां हमारे अनुकूल थी लेकिन हमने किया नहीं, तो हमें बहुत पछतावा होगा। बाहर वाले लोगों को इतना पछतावा नहीं होगा जितना हम ब्राह्मण बच्चों को होगा, क्योंकि स्वयं हमारे भगवान साथ है, कदम कदम पर हमको मदद कर रहा है, लेकिन उसकी मदद लेने के लिए हम अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं, बहुत रोज सवेरे हमको मदद करने के लिए आ रहा है, हर पल हमें मदद कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मदद लेने के बजाय दूसरी दूसरी बातों में अपने टाइम को वेस्ट करते जा रहे हैं। समय बहुत बड़ा खजाना है, ये समय कितना थोड़ा रह गया, अभी कितना समय बीत चुका है, अभी तो संसार में लोगों को तारीख का भी मालूम नहीं है, कितनी तारीख चल रही है, इतनी समस्याएं, कितनी समस्याएं हावी होगी संसार में। अब हम आत्माओं का कर्तव्य बनता है एकदम गुड वाइब्रेशन उन आत्माओं के प्रति, हम उनको वाइब्रेशन दें, गुड वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन, परमात्म प्यार के वाइब्रेशन, परमात्म प्योरिटी के वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन, सुख के वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन तो हमारी सोच के अनुरूप निरंतर वाइब्रेशन का प्रवाह होता ही रहता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा वायुमंडल में उनका प्रकंपन फैलते रहते हैं। तो अपने ऊपर पूरी नजर रखनी है उसमें। तो ये कुछ एक बातें थी जिन पर हमको बार बार मनन करना है, चिंतन करना है, अपने आप को बिजी करना है, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना है, हम क्या क्या कर सकते हैं, जो हमने नहीं किया कर लेने का, अभी भी हमको गोल्डन डायमंड चांस है मिला हुआ है। तो और क्या कहा आज की मुरली में, मुरली को ढीले से नहीं लेना है, कुछ तो पॉइंट लिखने चाहिए। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाप से बहुत लव रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए लव, क्योंकि जहां प्राप्ति होती है वहां लव अपने आप ही होता है, कितनी बड़ी बड़ी प्राप्तियां भगवान करने के लिए आए, हमारे जीवन के सारे दुख ही हर लिए, इंसान मन से ज्यादा दुखी होता है, तन से इतना दुख नहीं होता है। तो बाबा ने हमको मन मना बाप का मंत्र ही दे दिया, मन को एकाग्र करने के तरीके बता दिए, मन को शक्तिशाली खुराक खिला दी, तो मन मना बब होना तो सहज हो गया ना। तो मुरली के बिंदुओं को बार बार चिंतन करना, देखना है। और क्या बाबा ने कहा आज, सच्चा सोना बनना है, पढ़ाई की खूबी बताई, नशे में रहना है, सच्चा सच्चा लव एक बाप से रखना है, बाप घड़ी घड़ी तुम बच्चों को सुजाग करते हैं, माया सुला देती है जी, हाँ रूहानी योद्धा हो, रूहानी योद्धा था होगा लेकिन हमने अटेंशन नहीं दिया होगा, जो रूहानी योद्धा भी हैं हम है, तो योद्धा क्या करता है, युद्ध के मैदान पर वो अपने अस्त्र शस्त्र हमेशा तैयार रहता है, दुश्मन हमारे सामने और अस्त्र शस्त्र हमारे पास है नहीं तो क्या हालत होगी। तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र क्या है? सोमान है। ज्ञान के इतने सारे टाइटल बाबा ने हम सबको दिए हुए हैं, ये सारे अस्त्र शस्त्र हैं, इतने मंत्र दिए हुए हैं, इतनी युक्तियां बताई हुई हैं, सारे अस्त्र शस्त्र हैं, तो हमको वो याद रखने हैं हमेशा से, है ना। और क्या बताया बाबा ने, कहे जीवन हीरे तुल्य, कौड़ियों पिछाड़ी क्यों गुवा रहे हो? मौत सामने खड़ी है, मौत सिर पर खड़ी है, और फिर भी हम कितने एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, कोई चिंता नहीं रहती है, पता है। तो मौत सामने खड़ी है, भी हमको याद रहे तो भी हम सचेत रहे एकदम। और क्या कहा बाबा ने आज, कौड़ियों पिछाड़ी अपना जीवन नहीं गंवाना है, हीरे तुल्य जीवन है ये। हाँ, तो हीरे तुल्य हीरा क्या करता है? हमेशा वो चमकता है, मिट्टी में तो भी चमकता रहेगा। तो इस देह रूपी मिट्टी के अंदर मैं हीरा चमक रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, तो हमको बार बार देखना है अमृत वेले से रात्रि तक, जो भी हमको दिनचर्या मिली है, जो भी हमको अभ्यास करने हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास, वाणी से परे रहने का अभ्यास, बाबा के साथ कंबाइंड रहने का अभ्यास, ड्रामा को स्मृति में रखने का अभ्यास, बाबा के साथ होनेस्ट रहने का अभ्यास, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। नए नए हम योग की विधियों का निर्माण कर सकते हैं। तो अपने आप को सुजाग रखना, पढ़ाई का नशा रहना चाहिए। स्टूडेंट माना क्या, पढ़ाने वाला बाप, और पढ़ाई हमेशा उसकी बुद्धि में गूंजती रहती है ना। अच्छा, ओम शांति।